श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
के भर जा बुलाओ साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा परति बुलाओ साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा करते साई राम के रक्षण करते तुम भक्तन के शिरडी बुलाओ साई बाबा तेरे शिरडी में अमृत की वर्षा साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा
परति बुलाओ साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा
तीरथ में तीरथ है परति सत्य साई की है पुट परति तीरथ में तीरथ है परति सत्य साई की है पुट परति साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा हृदय समाओ साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा बुलाओ साईं बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए बलिहारी है गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए कहा जाता है अगर आपके सामने गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और परमात्मा दोड़े खड़े हों तो किनके चरणों को पहले आप स्पर्श करेंगे बलिहारी है गुरुदेव की गुरुदेव जी की जय जयकार हो गुरुदेव जी की वंदना हो कि उनके कारण हमें परमात्मा के दर्शन हुए अर्थात गुरु आपको परमात्मा तक लेकर जा सकता है गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को भगवान तक जाने का रास्ता दिखलाए लेकिन आज के युग में क्या होता है गुरु तो बहुत है लेकिन गुरु कम है शिष्य ज्यादा है एक जमाना था लोग गुरुकुल जाकर रहते थे, जो पढ़ाई लिखाई होती थी ना गुरुकुल में होती थी, गुरु के पास वर्षों रहते थे। गुरु प्रत्येक शिष्य को समझता था, उसके उद्धार हेतु, उसके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हेतु उसको आत्मा के रास्ते में आगे ले जाने हेतु जो सही मार्ग होता था वो दिखलाते थे। आज की भाषा में बोला जाए तो कस्टमाइज मेथड। सब शिष्यों के लिए एक नहीं है, सबके लिए अलग अलग रास्ता हो सकता है। और भी कई गुरु हैं, ऐसी बात नहीं है, शिष्य नहीं मिलते अच्छे, शिष्य होते हैं उनका गुरु पे विश्वास नहीं होता। आप यूं समझिए कि आप कलयुग में रह रहे हैं, आंखें खोल के चलना है आपको। अगर आप किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए और गलत व्यक्ति निकल गया तो आपका जीवन खराब भी हो सकता है, अच्छा निकल गया तो परमात्मा तक भी जा सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उस गुरु की, जो गुरु या जिस गुरु के दर्शन या जिस गुरु का आभास आप बचपन से करते आ रहे हैं, जन्म से करते आ रहे हैं। कहते हैं माता पहले गुरु होती है, जब बच्चे का जन्म होता है मां ही तो है जो बच्चे को सब कुछ सिखलाती है। कहा गया माता पिता जो है पहले गुरु है, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भरा, आचार्य देवो भवा। माता को गुरु की उपमा दी गई, पिता को गुरु की उपमा दी गई, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, गुरु देवो भवा। ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु माना गया, किसी ने गायत्री मंत्र को गुरु मान लिया, किसी ने कह दिया गुरु माने वो ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को गुरु मान लिया। लेकिन जिसकी चर्चा आज हम करना चाहते हैं वो है प्रकृति, नेचर। अगर आप कुछ सीखना चाहें तो प्रकृति ही काफी है। आप रोज सूर्य को देखते हैं, सूर्य अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, सुबह समय पर उगता है, समय पर छिप जाता है। सूर्य कोई पक्षपात नहीं करता, सबको बराबर प्रकाश दे रहा है। अगर आप अपने घर में हैं, आपने अपने घर के पर्दे नहीं खोले हैं, सूर्य के प्रकाश को भीतर नहीं आने दे रहे हैं तो आपकी गलती है। अगर आप बहुत सारे जल के पात्र बाहर रख दो, प्रत्येक जल के पात्र में आपको ऑफकोर्स जल भरा हुआ होना चाहिए, आपको हर पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब नजर आएगा। सूर्य को कितनी भी गाली दे दो आप, वो आपका प्रकाश देता रहेगा, उसे नहीं फर्क पड़ता। तो सूर्य आपको क्या बता रहे हैं, परोपकारी कर रहे हैं, वो परोपकार का काम है ना, ये आपको प्रकाश दे रहे हैं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब को अनेकों पात्रों में दे सकते हैं, इसी प्रकार से आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है। एक ही परमात्मा अलग अलग पात्र में चमकता है, एक ही परमात्मा अलग अलग जीव में चमकता है, एक ही आत्मा प्रत्येक जीव में है लेकिन हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि हमारा सोचने का तरीका हमारी दृष्टि केवल शरीर को देखती है। आप किसी को मिलते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। उसका चेहरा कैसे है? किसी को कैसे पहचानते हैं हम? शरीर की छवि देखकर या आवाज सुन के। किसी को बारह बार मिलते हैं उसके सोचने के तरीके को जान जाते हैं, उसके मन को जान जाते हैं आप, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाते हैं क्योंकि आत्मा को जानने का प्रयास हमने नहीं किया। चंद्रमा को भी देखते होंगे आप, बचपन से देखते आ रहे हैं आप। चंद्रमा जो है 14-15 दिन ऊपर जाता है, 14-15 दिन नीचे आता है। हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। चंद्रमा हमारे को हमारी क्षमता दिखाता है। वो कह रहा है आपकी वृद्धि हो रही है जब ऊपर जा रहे हैं, जब चंद्रमा ऊपर बढ़ रहा है, इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। जब बहुत संपत्ति मिल जाए, बहुत नाम मिल जाए, आप ऊपर उठ रहे हो जीवन में, तो अपने अभिमान को आगे मत आने देना। अगर आप नीचे गिर रहे हैं, विपत्ति में है, दुख में है, संकट में है, और ज्यादा दुखी मत होना। चंद्रमा नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा, ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। कहने का तात्पर्य है जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है और आप उतार चढ़ाव को एक ही तरीके से लें, अंग्रेजी में कहा जाता है विद इक्वानिमिटी, संतुलित भाव से। चंद्रमा हमारे को संतुलित होने का तरीका बतला रहे हैं। आप पानी पीते हैं? जल हमारे शरीर में कहा जाता है 50-70%, 50-70% पानी है। असल में पानी शब्द नहीं कहना चाहिए, लिक्विड है। जल का मतलब खाली जो पानी पीते हैं उससे नहीं होता, जल का मतलब होता है लिक्विड, जो बह सकता है। जल की क्वालिटीज क्या है, जल का गुण क्या है? जल आपको शीतलता देता है, मधुरता देता है। आप समुद्र के जल को नहीं पी सकते, नमकीन पानी है। आप नदी के पानी को पीते हैं, कुएं के पानी को पीते हैं, वह जल मीठा है और शीतल है। जल की जो क्वालिटी है वो शीतलता है। कहीं आग लग जाए क्या करते हैं? पानी डालते हैं। किसी को क्रोध आ रहा हो उसे बोलते हैं एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। पानी का, जल का, वाटर का नेचर है। कभी सुना है आपने जैसा जल या जैसा पानी वैसी वाणी? जिस प्रकार का आप पानी पिएंगे उस प्रकार की आपकी वाणी हो जाएगी। और किसी शास्त्र में लिखा गया पहला पहला श्लोक सदैव मधुरभाषी भवा, हमेशा मीठा बोलो। स्पीक द ट्रुथ। Speak softly and lovingly. मीठे का मतलब है softly and lovingly. आपकी आवाज कर्कश नहीं होनी चाहिए, डांटने वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज में प्रेम होना चाहिए, सुनने वाले को लगे कि क्या आनंद मिल रहा है। जल का स्वभाव है शीतलता, तो जल हमें बता रहा है अगर आपके अंदर इतना ज्यादा पानी है, 50-70% पानी है, जल है, तो वाई आज यू कूल, वाई आज यू काम, आप शांत क्यों नहीं है, आपका मन यहां से वहां क्यों उत्तेजित हो रहा है, क्यों भाग रहे हैं? आप रोजाना पानी पीते हैं, रोजाना जल ग्रहण करते हैं, लेकिन जल की क्वालिटी के अंदर लेके नहीं आते, क्योंकि हमने उस प्रकार से सोचा नहीं है। अब आज के बाद जब आप पानी पिए तो ये सोचें कि ये जल जो है आपके अंदर शीतलता लेके आ रहे हैं। आप सांस तो लेते होंगे ना, बिना सांस से कैसे जिएंगे, आपको ऑक्सीजन चाहिए, वायु में ऑक्सीजन है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से सांस ले रहे हैं अपने आप और मृत्यु तक लेंगे। क्या वायु हमें कोई संदेश नहीं देती? वायु किसी के संग नहीं टिकती, वायु से संतोष और निसंगता सीखी जा सकती है। वायु को किसी के साथ मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। आकाश हम कहते हैं ईथर, आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। आपको पता है कि अगर आप ऊपर उठें, रॉकेट में जाएं, आकाश कहां खत्म होगा? सृष्टि में जाएं, वे द एंड ऑफ द यूनिवर्स, आप चलते जाएंगे, यूनिवर्स के बाद और यूनिवर्स मिलेंगे आपको, समाप्त नहीं होंगे। कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन अंत कहां है? अंत नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला आज तक। जिस प्रकार से आकाश अनादि है, अविनाशी है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सर्वव्यापी है, सर्व शक्तिमान है, सर्व ज्ञानी है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। ओमनीप्रेजेंट का अर्थ है सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट करता है सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट करता है सर्वज्ञानी। धरती हमारी माँ है, धरती में आप अन्न बोते हैं, धरती से आपको भोजन मिलता है, धरती से आपको जीवन मिलता है, कभी सोचा आपने? और धरती सब कुछ सहकर भी आपको बहुत सुख देती है। हम लोग धरती को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, यहां से तोड़ दिया, वहां से काट दिया, खोद दिया, प्लास्टिक डंप कर दिया जाके अंदर, कितनी तकलीफ देती है हम धरती माता को। लेकिन धरती माँ तब भी आपका ख्याल रखती है, जैसे कि आपकी माँ, आप अपने माँ को कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती रहेगी। धरती के भीतर एक सहन शक्ति है, फॉरबियरेंस पावर है, पेशेंट है। धरती उपकार करती है आपको, तब भी देती है। अगर कोई आपको थोड़ा बुरा बोल दे, आप तो भाई मुंह फुला के बैठ जाएंगे, 10 दिन बात ही नहीं करेंगे, क्रोध आपको व्याकुल कर देगा। जो धरती वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य ये सारे एक प्रकार से गुरु हैं. समुद्र को देखा आपने, समुद्र के आसपास रहते होंगे आप. बरसात आने से समुद्र का पानी बाहर नहीं आ जाता और गर्मी होने से भी समुद्र का पानी सूख नहीं जाता. वर्षा ऋतु में जल ऊपर से गिरता है, छलकता है, या गर्मियों में जल सूखता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन सुख और दुख में एक प्रकार से है. तो आपको क्या मैसेज दे रहा है वो इक्वेनिमिटी का. छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, भोले होते हैं, निर्दोष होते हैं. लोग कहते नहीं कि परमात्मा का वास बच्चे के अंदर है. भोला है, निर्दोष है. आपको संदेश दे रहे हैं ना. इस प्रकार आप अगर प्रकृति में ढूंढेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी. एक वैश्या थी पिंगला नाम की, पूरी पूरी रात जागती थी. कोई धनवान ग्राहक आ जाएगा, उससे किसी को एक संदेश मिला या आदेश मिला या उपदेश मिला या मैसेज मिला या अंडरस्टैंडिंग मिली कि ये स्त्री केवल व्यापार के लिए पूरी रात जाग के प्रतीक्षा करती रहती है, शायद आज कोई ग्राहक आ जाए. अगर हम पूरी रात जाग के परमात्मा को पुकारें क्या वो नहीं आएगा? इसी प्रकार से गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जिनमें से उनकी व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी है. कुछ की कर दी, कुछ रह गई अभी. गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे. अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने 24 गुरु बनाए. सबसे कुछ ना कुछ सीखा. हम कहते हैं गुरु नहीं मिलते. गुरु तो है, गुरु हमारे इर्द गिर्द है, आस पास है, लेकिन हम पहचानने का प्रयास नहीं करते. अब जरा सोचिएगा, प्रकृति गुरु है. लोग गुरु को ना गुरु का आदर करते हैं ना, रेस्पेक्ट करते हैं. तो हमें नहीं करना चाहिए गुरु का आदर? क्या हमें अपने प्रकृति का आदर नहीं करना चाहिए? इसलिए कहते हैं सेव द नेचर, सर्व द नेचर. आप प्रकृति को बचाएं, उसकी सहायता करें. प्रकृति आपको लौट के देती है. जंगल से आप पेड़ काट लेंगे, सारे पहाड़ों में पेड़ काट लेंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, तो वर्षा कैसे आएगी? पानी कहाँ से आएगा? नदियां कहाँ से बहेंगी? विचार कीजिएगा. कभी आपने सोचा, संसार भर में आपने प्लास्टिक इतना ज्यादा कर दिया कि धरती में दबा दिया, हजारों साल तक वो खराब नहीं हो, गलेगा नहीं. वो आज ऐसा युग आ गया है कोरोना वायरस के समय खासकर, लोग प्लास्टिक में ढक गए हैं, अपने आप को पूरा प्लास्टिक में लपेट लिया. तो सोचिएगा, हर चीज का उत्तर मिलेगा प्रकृति से आपको. विचार कीजिएगा और प्रकृति का गुरु मान के कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा. आगे फिर अगले सप्ताह. जय श्री साईं राम.